नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे आज के रविवार के कार्यक्रम में आज हम भगवत साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, भगवत साक्षात्कार का अर्थ है परिवर्तन। हम कोई भी कार्य इस भौतिक संसार में करते हैं, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। कोई विद्यार्थी जब किसी कॉलेज में जाता है तो उसका उद्देश्य है कि वो 3-4 साल उस कॉलेज में जाने के पश्चात उसके अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। किस प्रकार का परिवर्तन? कि 4 साल पहले जब वो कॉलेज में भर्ती हुआ था तो वो उस विज्ञान या उस ज्ञान के बारे में अज्ञानी था। यदि कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो कुछ नहीं जानता था कि क्या ये मेडिकल साइंस होता है। और फिर 4-5 साल उस कॉलेज में रहने के पश्चात अब जब वो डॉक्टर बनकर बाहर आता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन दिखता है? क्या उसके अब 4 हाथ हो गए? एक बाहरी रूप से जब आप किसी डॉक्टर को देखते हो तो उसका व्हाइट कोट होता है और कान में वो स्टेथोस्कोप। कई बार वो जब कॉलेज में रहते हैं तब भी विद्यार्थी घूमते हैं वो पहनकर। तो हाँ, उस समय भी बहुत से उनको डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब तक कुछ पता भी नहीं होगा, कंपाउंडर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो बाहरी वेशभूषा को देखकर एक अंदाजा लोग लगा लेते हैं कि हाँ, भर्ती हुआ है तो एक ना एक दिन तो बन जाएगा ना डॉक्टर। आज नहीं, कल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, कभी तो डॉक्टर बन जाएगा। तो कुछ समय लगता है। जैसे आर्मी में कहते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए आज भर्ती कल चक्रवर्ती। आज भर्ती हुई है तब फिर ट्रेनिंग, और उसके बाद में फिर बहुत वर्ष लग जाते हैं उस भर्ती को चक्रवर्ती बनने में। तो हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ एक उद्देश्य है। अब जैसे उदाहरण हमने एक विद्यार्थी का लिया। अब मान लीजिए कोई व्यायामशाला जाता है, जिम, तो उसका उद्देश्य क्या है कि कुछ महीने पश्चात, कुछ साल पश्चात कुछ परिवर्तन आना चाहिए, है ना? कि जब मैं बाहर निकलूं तो देखते ही लोग थोड़ा डरने चाहिए। पहले तो कुत्ता भी भौंकता था, अब कोई मुझे जब देखे तो हाँ भाई इसे पंगा नहीं ले सकते, ये व्यायामशाला से बाहर आ रहा है। और अक्सर लोग जब व्यायामशाला से बाहर आते हैं तो थोड़ा अलग ही 2 फीट हवा में ही होते हैं। कि वो सारे कपड़े टाइट लगते हैं फिर, तो उनको लगता है कपड़े टाइट हो रहे हैं मतलब परिवर्तन आ रहा है कुछ। तो यदि देखा जाए तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है, दूध दही में परिवर्तित होता है, ये कैसे समझ में आता है? दूर से देखो तो वो भी सफेद ही दिखता है, कैसे समझ में आए ये दूध है दही है? उसके प्रयोग से है कि नहीं? उसके प्रयोग से। यदि कोई आपको दही दे और कहे कि खीर बनाओ इसकी, तो नहीं, या दूध की लस्सी बनाओ, दही की खीर दूध की लस्सी कैसा लगेगा? तो उसके प्रयोग से पता लगता है कि अब ये दूध में परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन जो है कुछ डालने से, कुछ डाला और उसमें फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। रात में आप डालते हो वो जावन डालते हो और फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर सुबह या कुछ घंटों पश्चात आप देखते हो कि उसमें परिवर्तन आया। तो अब जब ये परिवर्तन आप देख रहे हो तो इसके पीछे कुछ साधन गया हुआ है परिवर्तन आने के पीछे। इसे अंग्रेजी में वो जो जावन है उसे कल्चर भी कहते हैं, कि कल्चर जब गया उस दूध के अंदर तब वो दही में परिवर्तित हुआ। तो हमारी साधना भक्ति में, हम साधना भक्ति में देखते हैं कि हम बहुत से कल्चर का फॉलो करते हैं, संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमारी साधना भक्ति वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं, कोई साधारण संस्कृति नहीं है, वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने केवल एक पद्धति नहीं दी, श्रील प्रभुपाद ने एक जीवन शैली दी हमें। इसलिए जब प्रभुपाद को पूछा जाता था कि स्वामी जी आप कौन सा चमत्कार दिखा सकते हो, तो स्वामी जी ने दिखाया सन्यासी शिष्य बैठे हुए हैं कि ये चारों नियम को तोड़ा करते थे और अब ये चार नियम का पालन करते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते, कांदा लहसुन भी नहीं खाते, ये है चमत्कार, इसे कहते हैं परिवर्तन। तो जब हम टेस्ट लगाकर देखें कि अब ये दूध नहीं रहा, अब ये दही हो गया है, तो उसी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें उपकरणों के द्वारा, आध्यात्मिक उपकरणों के द्वारा ये जांचना है, परखना है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, या यथारूप जैसे थे वैसे, एज इट इज, या उससे बदतर। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले मैं ज्यादा सुख शांति का अनुभव करता था, अब ये जब से आपके हरे कृष्णा में आना शुरू किया हूं बहुत जीवन मन सब कुछ व्याकुल हो रहा है, सब कुछ अस्थिर लगता है। तो क्या हमारा ग्राफ वो प्रगति की ओर है या वहीं है या उल्टा, क्या हो रहा है, ये परखते रहना। जैसे कि पिछले रविवार को हमने विषय लिया था कैसे जीते जी हम जीवन मुक्त हो जाए। जीवन मुक्त स उच्यते इहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन अपि स उच्यते। जीवन मुक्त स उच्यते। इसके विपरीत एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, जिसमें कहा गया है कि एक है जो जीवन मुक्त है, जीते जी जो मुक्त अवस्था को प्राप्त किया है, और इसके विपरीत एक है जो जीते जी मरा हुआ, जिंदा मुर्दा। बहुत भयावह ये एक टर्म है, जिंदा मुर्दा। तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, नेहयद कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि स। श्लोकांत कैसे होता है, जीवन अपि मृतो, जीते जी मरा हुआ है। कौन सा इंसान जीते जी मरा हुआ है? वो इंसान जीते जी मरा हुआ है, सबसे पहले कहा गया है नेहयत कर्म धर्माय, कि जिसके कर्म धर्म की ओर नहीं, जो ऐसे कर्म कर रहा है जो उसे धर्म के पथ पर नहीं ले जा रहे, जीते जी मरा हुआ। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। ठीक है, किसी व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए जिन कर्मों के द्वारा वो धर्म के पथ पर आ चुका है, तो अब धर्म का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बताया कर्म का उद्देश्य है धर्म के पथ पर आ जाना। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? वैराग्य। कि यदि वो धर्म का पालन कर रहा है परंतु वैराग्य नहीं है, जैसे श्रील प्रभुपाद सूरत में थे और कुछ पत्रकार श्रील प्रभुपाद के पास आए और वो श्रील प्रभुपाद से वाद विवाद, संवाद नहीं वाद विवाद करने लगे। संवाद में और वाद विवाद में बहुत अंतर है, एक होता है डिस्कशन और एक होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यू कर रहे थे प्रभुपाद से, प्रभुपाद से कहते हैं स्वामी जी ये क्या आपने हिप्पियों को हमारी संस्कृति दे दी है, ये हिप्पियों को आपने हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारा खजाना आपने ऐसे ही लुटा के आ गए, वो भी हिप्पियों को। प्रभुपाद गंभीर हुए, प्रभुपाद कहे हिप्पियों को, ये जो अमरीकी मेरे शिष्य बैठे हैं इनको तुम लोग हिप्पी कहते हो, इन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपना वो देश ऐश्वर्यशाली देश छोड़ा है, जितनी सारी आसक्तियां सब छोड़ी, अरे ये तो चाय कॉफी भी नहीं पीते, तुम आज नाश्ते में क्या पी के रहा है बताओ। जिसे भगवान कहते हैं ना मनुष्यानाम सहस्त्रेशु, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक होता है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानता है, वैसे सहस्त्र भारतीयों में से कोई एक होता है जो चाय नहीं पीता। तो प्रभुपाद जानते थे, पी के आया होगा सुबह सुबह। बोले इन हिप्पियों ने चाय कॉफी छोड़ रखी है, क्या नाश्ते में क्या पिया आप तुमने, स्वीकार तो करना पड़ेगा। वो तो उनका शुक्र था प्रभुपाद ने आगे नहीं पूछा और क्या क्या गड़बड़ किया तुमने। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये सारे नियम पालन करते हुए, वैराग्य का जीवन अपनाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, सुबह उठते 4 बजे, ये कितने बजे उठते हो तुम? 4 बजे। तो प्रभुपाद कहे अंत में, बहुत सुंदर वो वाद विवाद है, प्रभुपाद ने कहा कि ये 4 बजे उठते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने आप को भारतीय बोलते हो, बोलते हो वैदिक संस्कृति अपनी धरोहर है, कितनी वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हो? अरे तुमसे तो हिप्पी अच्छे, प्रभुपाद अंत में कहता साला हिप्पी भी जप करता है, तुम क्या करता है? तो नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, कि यदि अब देखते हैं कि बहुत से अपने आप को धार्मिक कहते हैं, यहां टीका लगा लिया है, हम भी धर्म का पालन करते हैं, और पूछो कि कितना वैराग्य अपने जीवन में हासिल किया है, तब फिर प्रश्न चिन्ह रह जाता है चेहरे के ऊपर। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि जब तक वो कर्म धर्म की ओर और धर्म वैराग्य की ओर नहीं ले जा रहा, और अंततः वैराग्य का उद्देश्य क्या है? न तीर्थ पद भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्ति। जब तक वो वैराग्य भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्ति तक उसे नहीं ले जा रहा, जीवन अपि मृतोपि, जीते जी वो मरा हुआ। तो अब जब हम इस श्रृंखला को देख रहे हैं, कर्म धर्म वैराग्य और भक्ति, तो जब हम परिवर्तन, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है हमारे अंदर वो परिवर्तन आना। ये तो श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी। तो परिवर्तन दो प्रकार के, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी परिवर्तन वो स्थूल रूप का होता है, आंतरिक सूक्ष्म रूप का। जैसे हमने डॉक्टर का उदाहरण लिया कि वो कॉलेज गया है, मेडिकल कॉलेज में गया है, मेडिकल कॉलेज से बाहर आता है तो ऐसा नहीं कि बाहरी रूप से वो अब कोई बहुत उसके 4 चांद लग गए हैं चारों तरफ, नहीं, आंतरिक रूप से सूक्ष्म रूप से अब वो किसी ज्ञान को धारण किए हैं अपने मन में, अपनी बुद्धि में। तो यदि ये पूछा जाए कि जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, केवल सूक्ष्म या स्थूल, दोनों होना चाहिए या केवल एक होना चाहिए? हाँ, हम आए, हमें तिलक लगाना सिखाया किसी ने, धोती कैसे पहनते हैं, वो सबसे बड़ा टेंशन रहता है जब इस कौन में, धोती कैसे पहनना है, कितनी बार गांठ मारते हैं कि ये, क्योंकि केवल धोती पहन के केवल आपको बैठना नहीं हो तो नचाते हैं बाद में। तो ये स्थूल रूप से परिवर्तन हो रहा है कि अब कंठी माला, शिखा, ये सब चीजें, और फिर आप अपने मित्रों से मिलते हो कुछ महीने पश्चात तो मित्र पूछते, बिल्कुल बदल गया है यार, पहचान में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बदल गया। तो ये एक बाहरी जो परिवर्तन होता है, ये जो बाहरी परिवर्तन है, हां ये इसका उद्देश्य है कि आंतरिक परिवर्तन होता रहे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक भजन में वो कहा, माथेर तिलक गलेर माला ए तो कलीर चेला, कि जिसने केवल माथे पर तिलक लगा लिया और गले में वो माला वगैरह धारण कर ली, लेकिन आंतरिक रूप से यदि परिवर्तन नहीं है, वो केवल कली का चेला है। क्योंकि कली का विशेष गुण क्या है? कापट्य, हिपोक्रेसी। तो जब हम बाहरी और आंतरिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो अब यदि भक्ति में हम देखें तो हम आते हैं बहुत लगेज लेके, बैगेज लेके आते हैं। कौन सा बैगेज, कौन सा लगेज? हमारे कर्मों का। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वो केवल छोटा कोई अटैच ही नहीं है, छोटी सी कोई सूटकेस नहीं है, वो पर्वत के जितना बड़ा वो भार लेके हम इस मनुष्य देह में आते हैं, पाप, पाप रूपी पर्वत का। और भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं उस पर वज्र है, वज्र। तो पर्वत को यदि चूर चूर करना है तो केवल वज्र ही कर सकता है, लाइटनिंग, थंडरबोल्ट, और वो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर एक चिन्ह है जो कि हमारे पाप रूपी पर्वत को चकना चूर कर सके। तो हम जो हमारी आदतों को, हमारे कर्मों को, हमारा रहन सहन, हमारी धारणाएं, देखिए सब कुछ अलग अलग प्रकार की धारणाएं हमारी होती हैं, रहन सहन, आदतें, क्या कुछ नहीं होता। तो इन सब पर यदि गौर करें, और अब भक्ति में आने के पश्चात जब धीरे धीरे वो कर्म धर्म में, धर्म वैराग्य में, और वैराग्य अब भक्ति में लगाया जा रहा है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से वो परिवर्तन आ रहा है। एक हमारे ब्रह्मचारी बता रहे थे, वो साउथ इंडियन, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 25 कप कॉफी पिया करते थे दिन में, बस जरूरी बताना, दिन में 25 कप कॉफी। और जब वो भक्ति में आए तो वो 25 कप कॉफी छोड़ने में उन्हें 2 दिन भी नहीं लगा, और कोई इच्छा उसके बाद कोई इच्छा भी नहीं होती थी। और वो बता रहे थे कि उनकी जो माता थी वो उनको टिफिन बना कर दिया करती थी। उन्होंने अपने माता से कहा कि कल से टिफिन में प्याज लहसुन नहीं डलेगा किसी भी चीज में। तो जब ये कहा उन्होंने अपनी माता से, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं, चाहे जो भी बनाओ, सांबर बनाओ, चटनी बनाओ, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, तो उनकी माता ये सुनकर बेहोश होकर गिर गई, केवल सुनकर। तो ये बता रहे थे इनका साक्षात्कार कि ये सुनकर बेहोश हो गई और मुझे वो छोड़ने में भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब मैंने निर्णय लिया तो भगवत कृपा उसके साथ साथ पीछे पीछे घूमती रहती है। ये कहा गया है कि भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान की कृपा शक्ति वो इस इंतजार में रहती है कि कब ये बद्ध जीव इस मनुष्य देह में जब आया है, कब ये एक इच्छा करता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का। और यदि उसने ऐसे ही घूमते फिरते सहजता से कोई एक इच्छा भी कर दी कि चलो भगवान के मंदिर चलते, तो कृपा शक्ति अपनी पूर्ण शक्ति लेकर बस अब इसको छोड़ना नहीं है। और यह बताया गया है नृत्यंती पितर सर्वे, कि तुरंत उसके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी पूर्वज उस जीव के जितने भी पूर्वज हुए, वो जहां कहीं पर भी, कोई नर्क में होगा, कोई यहां, कोई पितरलोक, कहीं पर भी कोई हो गए, उनके सारे पूर्वज वो जब ये देख लेते हैं कि हमारे खानदान में एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा जागृत की, वो नाचने लगते कि अब हमारा उद्धार निश्चित है, कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है, हमारे जैसे पाप कुल में एक जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा किया है। सोचिए कि यदि वो भक्ति में लग जाता है तो उनका क्या हाल होता है, फिर इच्छा किया केवल उसने। तो ये भक्त बता रहे थे कि क्योंकि उन्होंने इच्छा की कि मुझे ये चार नियमों का पालन करना है, भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की जितनी सारी शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति, कृपा शक्ति, क्रिया शक्ति, परास्य शक्ति, विविधैव श्रूयते, भगवान की तो अनगिनत शक्तियां, सारी शक्तियां लग गई अपने उनको सुरक्षा देने के लिए। इसलिए हम पीछे मुड़कर देखें, या जब कोई बाहर का व्यक्ति हमें देखता है कि ये व्यक्ति जिसको मैं जानता था 5 साल पहले, जिसके साथ बैठकर मैं क्या कुछ नहीं किया करता था, ये व्यक्ति इतना परिवर्तन इसके अंदर, तो कई बार बोलते हैं कि यदि इस व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ गया है तो मान गए, बोलते ना मान गए उस्ताद, भक्ति को मान गए आपके। अब वो जिसके अंदर वो परिवर्तन आया है उसे इतना आश्चर्य नहीं लगता, कैसे मैं ये सब पालन करूं, उसे कभी इतना आश्चर्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां लगी हुई है उसकी सुरक्षा करने के लिए। जैसे कि अभी हम अपनी स्वस्थ अवस्था में यहां बैठे हुए, हमें लग नहीं रहा कि हमें कोई बुखार है, बीमारी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो वो इम्यूनिटी पावर है वो सब काम कर रही है, हमें पता ही नहीं कि वो कैसे कोई किसी बैक्टीरिया को मार रहा है, किसी वायरस को मार रहा है हमारा, हमको ठीक यहां पर बिठा के रखने के लिए। तो वैसे ही ये भगवान की जारी सारी शक्तियां लग जाती है। जेड सिक्योरिटी, जिसने एक बार इच्छा की, जेड सिक्योरिटी भगवान भेज दे चारों ओर से सिक्योरिटी। हमने कहा ए टू जेड सिक्योरिटी, केवल जेड नहीं। एक दंपति हमारे इस्कॉन के, मैं हाल ही में उनके विषय में सुन रहा था कि जो पति वो बिल्कुल कृष्ण भावना मत के विरुद्ध, और उनकी जो पत्नी वो भक्ति में आई और उन्होंने माला वगैरह शुरू की। इनके जो पति थे इतना विरुद्ध कृष्ण भक्ति के कि जैसे वो माला हाथ में देखते अपने पत्नी के, वो माला छीन के वो फेंक देते, कभी बालकनी के बाहर, कभी कचरे के डब्बे में। वो हर बार उनको नई नई माला खरीदनी पड़ती थी, और जो भी वो भक्ति में करना चाहती थी उसके विरुद्ध वो सब कुछ करते थे, जानबूझ के सब कुछ उसका बंद करने के लिए। ये माता जी, इन्होंने 16 माला शुरू कर दिया। इतना इनको भगवान की कृपा इतनी हुई कि दृढ़ विश्वास इनका इतना बढ़ता गया भगवान में। और 16 माला वो कब करती थी? रात में, वो जब उनके पति सो जाते, उनके पति सोने के बाद वो चद्दर के अंदर 16 माला करती थी। वही एक जगह थी और वही एक समय था उनको 16 माला अपना पूरा करने के लिए। कल्पना कीजिए, हम 16 माला करते हैं तो सोचते हैं कब चद्दर आएगी, कब ना, कब बिस्तर आएगा। तो सोचिए, हमें यदि कोई माला थमाए और अच्छे पलंग पर तकिए और ना चद्दर के साथ माला करो 16 माला, तो इनका दृढ़ विश्वास कि वो रोज अपना 16 माला उस तरीके से किया करती थी। और इनके जो पति, इनको सब कुछ खाना पीना पसंद था, तो ये अलग से प्रसाद बनाती और जो कुछ वो गलत खाते उसमें प्रसाद डाल कर देती कि कम से कम कुछ तो प्रसाद का अंश जाएगा इनके सिस्टम में। और वो धीरे 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 शनै शनै परिवर्तन होना शुरू हुआ। और आज स्थिति ये है कि दोनों हरे कृष्णा के दीक्षित भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। राधानाथ महाराज, हम मायापुर यात्रा में थे, मधाई टील करके एक जगह है, जगह मधाई जहां उद्धार हुआ। जगह मधाई की कथा सुनाते समय महाराज ने कहा, इफ जगह मधाई कैन कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बिकम प्योर डिवोटीज, नन ऑफ अस कैन गिव एनी एक्सक्यूज कि मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये आदतें हैं, मेरी ये आसक्ति है, मैं इतना पापी हूं, कोई बहाना नहीं दे सकते। इसलिए भगवान श्री गौर निताई ने जगाए मधाई को चुन के उनको कृपा दी कलयुग में कि आगे चलकर स्टैंडर्ड कर दिया कि है कोई, दिखाओ इनके जितना पापी, इनके जितना पापी है कि चित्रगुप्त अपने पूरे स्टाफ को लेकर राउंड द क्लॉक वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे कितने पापी लोग कर रहे हैं। तो कोई बहाना नहीं दे सकता। जैसे प्रभुपाद ने कहा, हला हिप्पी भी जप करता है, तुम क्या करता है? तो हम अब यदि बाहरी परिवर्तन में को देखें तो ये देह परिवर्तन तो बिना कुछ किए होता ही रह रहा है। शरीर जो कि सरक रहा है मृत्यु की ओर, हम पैदा हुए, हम कोई प्रयास कर रहे हैं कि शरीर बड़ा हो छोटा हो जो भी को, अपने आप ये परिवर्तन शरीर में हो रहा है। कई बार तो हमारे बिना चाहते हुए भी परिवर्तन हो रहा। कोई पतला होना चाहता है, नहीं हो रहा। कोई खा रहा है मोटा होना चाहता है, वो समस्या। कोई लंबा चौड़ा होना चाहता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा हो गया वो तो ठिगना होना चाहता है, जो भी। तो इस ये जो देह हमारा है ये तो परिवर्तित होता ही रहता है। तथा देहांतर प्राप्तिर बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, ये सब जितने मनुष्य हैं सबके फोटो एल्बम में ऐसे ही फोटो रहता है सबका। हालांकि देखा जाता है कि जो बचपन का फोटो और ये अंत का फोटो, बीच में बहुत सारे फोटो होते हैं तो भूल जाता है, लेकिन यदि उसका स्लाइड शो बनाएं, एक एक करके दिखाएं, तो ऐसा ही दिखेगा कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, उसके पश्चात देहांतर, कि फिर वो मृत्यु का द्वार खुलता है और दूसरे देह में जो परिवर्तित होके वो जा रहा है उसका द्वार, उससे उसके द्वार से फिर से एंट्री इस भौतिक संसार में। ऐसा नहीं कि गया फिर वो वापस से एंट्री। तो ये है देह का परिवर्तन जो चलता रहता है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कृष्ण भक्ति में हमारे सूक्ष्म देह में परिवर्तन लाना है, हमारे मन में, चेतो दर्पण मार्जनम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि शरीर मार्जनम, कि बस अब आए हो मनुष्य देह में तो अब घिसो इस शरीर को, पॉलिश करो, लगाओ जो भी क्रीम पाउडर। मार्जनम किसका, चित्त का, हृदय का, इस प्रदूषित मन का मार्जन। अर्थात चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता सुनाई, वही चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में सर्वप्रथम कहते हैं कि परिवर्तन यदि लाना है तो परिवर्तन सूक्ष्म रूप से लाना है। चेतो दर्पण मार्जनम, और फिर तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन, ये सारे जो परिवर्तन हैं ये सब सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ये परिवर्तन आते हैं या आने चाहिए, अपेक्षित हैं। तो यदि हम भगवद गीता का ये श्लोक लें, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो सुना, सुनने के पश्चात अर्जुन में क्या परिवर्तन आया। हम जो इतना गीता सुनते हैं, इतना गीता पढ़ते हैं, गीता बांटते हैं, सुनते पढ़ते बांटते बोलते भी हैं दूसरों को। एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य, वो प्रभुपाद को टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का नया प्रिंट दिखा रहे थे कि कैसा बाइंडिंग है उसको, कौन सा बाइंडिंग यूज किया है, कितने पेंटिंग्स अंदर, प्रभुपाद को सब दिखा रहे। प्रभुपाद ने कहा, तुमने पढ़ी किताब? नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, ये मैंने अपने शिष्यों के लिए लिखी है, केवल उसको बांटने के लिए नहीं लिखी। तो जब प्रभुपाद गीता के विषय में कहा करते थे तो प्रभुपाद को पूछा जाता था कि ये आपने अपनी गीता को यथारूप नाम दिया, एज इट इज कहा, ये क्यों, ऐसे क्यों? तो प्रभुपाद का बहुत ही सरल उत्तर होता। प्रभुपाद कहा करते थे, भगवद गीता यथारूप मैंने प्रस्तुत की है, क्योंकि जैसे अर्जुन ने यथारूप भगवद गीता सुनकर परिवर्तन लाया अपने जीवन में, उसी प्रकार से इस गीता को जो पढ़ रहा है ये सारे साक्षी हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया कि अर्जुन के पद चिन्हों पर नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम् तव, करिष्ये वचनम् तव। बहुत महत्वपूर्ण, प्रभुपाद बहुत बार कहा करते थे। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछ रहा था, प्रभुपाद वो मेहर बाबा के बारे में क्या कहना है आपका, इस आनंद के बारे में क्या कहना है, उस स्वामी के बारे में क्या कहना है, इस पथ के बारे में क्या कहना है। प्रभुपाद ने कहा, तुम किसे पालन कर रहे हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, पूछो मत, पालन करो किसी का। डोंट जस्ट कीप आस्किंग, फॉलो समवन एंड शो मी द रिजल्ट. भले न परिचय, कि परिणाम उसका, उसका जो निष्कर्ष है वो दिखाओ मुझे. जैसे गिरिराज महाराज वो बता रहे थे कि चेन्नई में वो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में लगे हुए थे, उस सेवा में. तो एक भारतीय व्यक्ति ने गिरिराज महाराज से कहा कि देखो भाई, आपको लाइफ मेंबर यदि बनाना है ना, तो आपको ये जो आपका ये इतना ऊपर का फिलॉसफी है उससे नीचे उतरो आप. कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू कैंट बी सो स्ट्रिक्ट एंड रिजिड. सो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फिलॉसफी. तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद को लेटर लिखे कि हाउ फार कैन अ प्रीचर कॉम्प्रोमाइज इन हिज प्रीचिंग. तो प्रभुपाद को लेटर लिखा उन्होंने और वो उत्तर अपेक्षा कर रहे थे. प्रभुपाद उस समय ट्रैवलिंग कर रहे थे तो समय लग गया उत्तर भेजने में. और श्रील प्रभुपाद का उत्तर आने से पहले अब गिरिराज महाराज लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में फिर लग गए. तो हुआ क्या कि एक दूसरा भारतीय वो गिरिराज महाराज से मिला और गिरिराज महाराज से कहता है कि सबसे ऊंचा सिद्धांत है कि हम सब भगवान हैं. आप भगवान हो, मैं भगवान हूं, ये पूरा जगत सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म. तो गिरिराज महाराज वो उन्हें पुस्तकें दिखा रहे थे, कह रहे थे हमारे पास लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम. लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम छोड़ो, हम सब भगवान हैं. क्या लाइफ मेंबरशिप लगा रखे. तो नम्रता से गिरिराज महाराज उनको समझा रहे थे. वो उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो बार 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 बार. तो गिरिराज महाराज ने सारी पुस्तकें बंद की, सब बैग में डाली और फिर गिरिराज महाराज शुरू हो गए. कैसे भगवान हो? तो फिर आगे का आप जानते हैं क्या हुआ होगा. तो गिरिराज महाराज ने पूरा जो भी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, भगवद गीता से, भागवत से, सब कुछ श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया. और ये व्यक्ति ये एकदम चकाचौंध रह गया. और फिर इसने गिरिराज महाराज को कहा मेरे ऑफिस में आओ. ऑफिस में एक पर्दा लगा हुआ था, इसने पर्दा खोला तो राधा कृष्ण के अर्च विग्रह. और इसने कहा कि मैं वैष्णव हूं, मैं आपको टेस्ट कर रहा था. I was testing you whether will you compromise on what your Guru Maharaj has taught you. और गिरिराज महाराज ने कहा ये चाहे लाइफ मेंबर नहीं बने. वो पहले जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था तो गिरिराज महाराज ने सोचा अगर ये लाइफ मेंबर नहीं बने लेकिन मैं जो शुद्ध सिद्धांत है वो इधर स्थापित करके रहूंगा. और फिर वो लाइफ मेंबर बना. और गिरिराज महाराज उसको लाइफ मेंबर बनाने के पश्चात फिर जब आए उसी दिन श्रील प्रभुपाद का रिप्लाई गिरिराज महाराज को मिला. और श्रील प्रभुपाद ने अपने रिप्लाई में लिखा माय गुरु महाराज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, सो व्हाई यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. श्रील प्रभुपाद की तो यहां पर अर्जुन ने यथारूप जो भगवद गीता सुनी उसे करिष्ये अपने कर्मों में अर्जुन ने लगाया. तो यदि अर्जुन का परिवर्तन हम देखें कि कहां से अर्जुन की क्या स्थिति थी और कैसे कैसे अर्जुन में परिवर्तन आए. सर्वप्रथम पहले अध्याय में आप पढ़ो विषाद अवस्था, अर्जुन विषाद योग उस अध्याय का शीर्षक है। तो अर्जुन विषाद में पड़े हुए, उसके पश्चात उस विषाद अवस्था में अर्जुन ने किया क्या? प्रश्न, परिप्रश्न। और क्योंकि अर्जुन के प्रश्न वो वाजिबी थे, और वो भी किसके, किसे पूछा? साक्षात भगवान से पूछा। तो ये बहुत आवश्यक है, हमारी यदि विषाद अवस्था है तो विषाद अवस्था में प्रश्न पूछने का अर्थ है उस विषाद अवस्था का निवारण, परंतु प्रश्न परिप्रश्न होना चाहिए। और परिप्रश्न कब होगा? जब वो परम सत्य के संपर्क में पूछा जाएगा, जैसे अर्जुन ने स्वयं परम सत्य को अपने प्रश्न पूछे। अब उसके पश्चात अगली स्थिति अर्जुन की थी श्रवण अवस्था। कई बार होता है कि कोई प्रश्न पूछता है और उसके बाद में फिर वो अपने धुन में रहता है, आप उत्तर दो या ना दो, मैंने अपना प्रश्न पूछ दिया, मुझे प्रश्न पूछना था। होते हैं कई ऐसे कार्यक्रम में आते हैं कि पूरे लेक्चर में सो रहे हैं, लेक्चर जैसे ही एनी क्वेश्चन, हाँ भगवान कृष्ण क्यों, भगवान कृष्ण और कोई क्यों नहीं। एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछता है ये हरे कृष्ण ही क्यों जप करना है, 1 2 3 1 2 3 नहीं कर सकते, कांट वी चैंट 1 2 3 1 2 3। प्रभुपाद ने कहा यू कैन चैंट 1 2 3 1 2 3 एंड वंस योर काउंटिंग इज ओवर देन यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रवण अवस्था, अर्जुन ने नम्रता से ध्यान से भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसका श्रवण किया। तो यह अवस्था होनी चाहिए अगली, जो तीसरी अवस्था है। तत्पश्चात मोहनाश, जब श्रवण होता है तो श्रवण के पश्चात मोह का नाश होता है। सत्संगत्वे निसंगत्वा निसंगत्वे निर्मोहत्वम, श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है कि सत्संग में आते हैं तो होता क्या है, श्रवण करते हैं, जैसे कि हम हर रविवार को आते हैं भगवान का श्रवण करते हैं। तो उसका, उसकी अगली स्थिति क्या होनी चाहिए? मोहनाश, निर्मोहत्वे उस श्रवण के पश्चात। तो अर्जुन का धीरे धीरे मोहनाश, तत्पश्चात संदेह नाश। अर्जुन के अंदर जितने सारे संदेह थे, जैसे कि श्लोक में अर्जुन ने कहा नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ और फिर मेरे सारे संदेह, क्योंकि इस कलयुग में विशेष रूप से बहुत से संदेह रहते हैं हमारे, संशय। विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कोई प्रारंभ करता है तो इतने सारे प्रश्न पूछता है कि ये 16 मालाएं क्यों, और ये हरे राम पहले क्यों नहीं, हरे कृष्ण पहले क्यों, ये उंगली बाहर क्यों। तो कितने सारे वो संदेह होते हैं, ये प्रसाद इतना क्यों। बहुत बार लोग ये प्रसाद लेने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि ये लोग ना कुछ मिला मुलू के देते हैं ये लोग। इसलिए जो ये हरे कृष्ण का प्रसाद खाना एक बार शुरू कर देना, उसको लत लग जाती है उसकी लत। और ये बात सही है, ये कोई गलत नहीं है, मिला के देते हैं ना, भगवान की कृपा मिला के देते हैं उसमें, प्रसाद है क्या, भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा उसमें मिला के देते। मुंबई में जब हमारा संडे फिश प्रोग्राम, और सुबह में जो संडे भागवतम क्लास के लिए एक व्यक्ति वो हर संडे भागवतम क्लास में आया करते थे, और संडे भागवतम क्लास बहुत डीप क्लास हुआ करता था, अभी भी वैसा ही है। तो थोड़े डीप सब्जेक्ट्स डिस्कस होते थे। तो ये नया नया व्यक्ति, तो मैंने पूछा कि आप केवल संडे भागवतम क्लास में दिखते हो? हाँ, कुछ विशेष आपको इंटरेस्ट भागवतम? नहीं, वो जो खिचड़ी देते ना क्लास के बाद की खिचड़ी होती है, मुझे पूरे बंबई में कहीं नहीं मिलती। तो उसको संडे फीस्ट में कोई रुचि नहीं थी। मैंने कहा बाद में फीस्ट भी होता है। नहीं मालूम है, मैंने एक बार खाया था, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो खिचड़ी। क्योंकि वो संडे फीस्ट में कभी पूरी कभी सब्जी और मतलब वो सब मुझे मिल जाती, लेकिन ये खिचड़ी मुझे पूरे मुंबई में ढूंढा, मैंने किधर नहीं मिली मुझे। तो वो बोल रहा था कि एक बार मैंने ये खिचड़ी खाई आपकी, और मुझे लगा, और क्योंकि वो कूपन वगैरह देते हैं, तो मुझे लगा कि ये खिचड़ी मेरे को, तो ये खिचड़ी बस। और वो साउथ बॉम्बे में रहने वाला व्यक्ति, मैंने जब पूछा, मुझे लगा कि दिखने में भी लग रहा था कि किसी अच्छे घराने से, तो साउथ बॉम्बे में रहने वाला, वो पेडर रोड में रहने वाला आलिशान उसका अपार्टमेंट, और उसके दो तीन तो नौकर जो क्या कुछ नहीं उसको बना के खिला सकते, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागवतम क्लास में बैठता, उसको कुछ एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता, खिचड़ी। उसके बाद में जो उसको वो खिचड़ी खाने मिलती थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, प्रसादम इज द सीक्रेट वेपन। कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत सारे कुछ प्रश्न हो ना, संदेह प्रश्न संशय ये सब अलग अलग वर्ड्स, तो प्रसादम प्लेट उसके सामने रख दो, सब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा फिर उसका। इसे एक व्यक्ति, वो मायावादी थे, तो वो प्रभुपाद से मायावाद और ये वाद वो वाद के विषय में वाद विवाद कर रहे थे। तो प्रभुपाद से पूछा, तो आप इस वाद के बारे में क्या कहना है, निर्वाणवाद, ये जड़वाद, ये मायावाद, निर्विशेषवाद? तो प्रभुपाद ने कहा, देखो भाई, जो भी वाद के बारे में आप कह रहे हो, अंत में हम दोनों जिएंगे कैसे? How will we survive? We need grains, है ना? चाहे मैं वैष्णववाद का पालन करूं, आप मायावाद का पालन करो, अंततः हम दोनों को खाना है ना, जीने के लिए या उस वाद को पालन करने के लिए। हाँ, वो अन्न कहां से मिलता है? धरती से। और वो धरती में अन्न आता है वर्षा के कारण। वर्षा कहां से आती है? यज्ञ करके। यज्ञ करके वर्षा आती है, और फिर वो वर्षा से धन उगता, धन जो है वो उपजाऊ होता है, और उसके धान्य, और उसके पश्चात वो धान्य हम खाते हैं, तब जाकर आप ये सब बोल पा रहे हो, वाद वो वाद। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यज्ञ ना, यज्ञ के वजह से तो ये सब कुछ हो। हाँ, और इस कलयुग में यज्ञ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद ने कहा, तो फिर ये शरीर को जिलाने के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें? हरे कृष्णा जप करना चाहिए। चलो इसको माला दो, नेक्स्ट। तो संदेह नाश। और अक्सर हमने देखा है कि कितने हैं दो चीज, एक तो कीर्तन और एक प्रसाद। जितने सारे प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर उनको वो कीर्तन में और प्रसाद में मिल जाता है। तो यहां पर ये जो अगली स्थिति है अर्जुन की, संदेह नाश, उसके पश्चात स्मृति। अर्जुन विस्मृति में चले गए थे कि उनका क्षत्रिय धर्म क्या है, उस विस्मृति में चले गए थे। और जब भगवान के मुख से भगवद गीता सुनी अर्जुन ने, तो न केवल मोहनाश, न केवल संदेहनाश, स्मृति लब्धा अपनी स्मृति में। इसलिए यह कहा गया है कि इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हम सब भगवान को भूले हुए, विस्मृति में, भगवान की विस्मृति में हम घूम रहे हैं। मतलब जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि मिस्टर बिरला का लड़का भूल चुका है कि वो किसका बेटा है या उसके पिता कौन है, और वो दर दर ठोकर खा रहा है, धक्के खा रहा है। तो वैसे ही हम अपने असली पिता को छोड़कर इस भौतिक संसार में विस्मृति में दर दर ठोकर खा रहे। तो स्मृति ये अगली स्थिति होनी चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि तो अर्जुन के लिए सब कुछ नहीं, हमारे लिए ये ध्यान में रखिए कि ये इस प्रकार का परिवर्तन हमारे अंदर आते रहना चाहिए एक एक पद पर, कि क्या मेरी विषाद अवस्था परिप्रश्न अवस्था तक आई है, क्या वो परिप्रश्न अवस्था अब श्रवण अवस्था, फिर मोहनाश, संदेहनाश, भगवान की फिर स्मृति पुनः स्थापित हुई है, और फिर अंततः परिवर्तन का अंतिम चरम पद क्या है, पूर्ण शरणागति। और अर्जुन ने अपनी पूर्ण शरणागति कैसे दिखाई, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण आप अब जो कुछ कहोगे वो उन आदेशों का मैं पालन करूंगा। इसे कहते हैं भगवत साक्षात्कार का सही अर्थ। तो यदि हम कुछ उदाहरण लें हमारे शास्त्रों से कि कैसे कुछ ऐसे ऐसे भगवान के भक्त जिनके अंदर ये इस प्रकार का परिवर्तन देखा गया, भगवान बुद्ध वो एक बड़े राजकुमार युवराज, सिद्धार्थ उनका नाम, और फिर उनमें ये साक्षात्कार इस भौतिक संसार की जो पीड़ाएं और कलमश, इनको देखकर उनके अंदर जो साक्षात्कार हुआ, तत्पश्चात हम उनके अंदर क्या देखते हैं, परिवर्तन। तो भगवान बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं कि जब हम इस भौतिक संसार के पीड़ाओं को देखते हैं तो क्या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है। भगवान बुद्ध के अंदर ऐसा साक्षात्कार आया कि उन्होंने वैराग्य को अपना लिया, और उनके विषय में भविष्यवाणी की थी कि यदि ये व्यक्ति, ये युवराज, ये राजकुमार यदि इस भौतिक संसार के असली स्वरूप को देख लेगा, ये दुखालय संसार को देख लेगा, तो ये वैराग्य का जीवन अपना लेगा। तो दुख को देख कर क्या हमारे अंदर वो वैराग्य उत्पन्न होता है, ये इनसे हमें सीखना है। मृगारी इनका उदाहरण है कि इनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया, अदमना कर पशुओं को छोड़ दिया करते थे और तड़पता उनको देखकर इनको बहुत एक्सटेसी होती थी, मृगारी। श्रील प्रभुपाद ने हरिशौरी प्रभु को देखा कि वो चींटियों को, जैसे मृगारी ने चींटियों को अपने ही वस्त्र से दूर किया जब नारद मुनि आए थे उनका दर्शन करने के लिए, तो नारद मुनि को दंडवत देने के लिए पहले उन्होंने चींटियों को, जो व्यक्ति अधमरा कर छोड़ दिया करता था, ऐसे नृशंस कार्यों में लगा हुआ, तो जब श्रील प्रभुपाद ने हरिशौरी प्रभु को देखा वो चींटियों को बचा रहे हैं कि चींटियां नहीं मर जाए, तो प्रभुपाद ने कहा देयर वॉज अ टाइम इफ नॉट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यू वुड इवन स्लिट द थ्रोट ऑफ अ काउ एंड ईट हर, बट नाउ जस्ट सी द चेंज, द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, that you are not even willing to hurt an ant. इसे कहते हैं परिवर्तन, भगवत साक्षात्कार का सही अर्थ. एक व्यक्ति गुरुदास प्रभु, श्रील प्रभुपाद के एक और शिष्य, वो गुरुदास प्रभु ये भारतीय व्यक्ति, ये अलीगढ़, अलीगढ़ की ये एक कथा है. तो ये व्यक्ति अलीगढ़ के, और इन्होंने गुरुदास प्रभु जो लाइफ मेंबरशिप कर रहे थे, तो गुरुदास प्रभु से ऐसे ही वाद विवाद शुरू कर दिया. कह रहे भाई क्या तुम ये सब लेके घूमते रहते हो, माला झोली, और रास्ते में ये सब करना, क्या नाटक लगा रखा है सब, कृष्ण भक्ति का इतना आडंबर क्यों, ये कृष्ण भक्ति का आडंबर क्यों, इतना प्रदर्शन क्यों ये तुम्हारे कृष्ण भक्ति का. अरे हम भी कृष्ण भक्ति, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है तुमको, ये कीर्तन में क्या भगवान बहरे हैं. तो वो उसे उकसा रहे थे गुरुदास प्रभु को. तो गुरुदास प्रभु गुस्सा हुए, और गुस्से में उन्होंने सुना दिया इनको. तो जब गुरुदास प्रभु का गुस्सा देखा, तब ये व्यक्ति ने कहा ये बस यही मैं देखना चाहता था, यही सिखाया, यही सीखा तुमने अपने गुरु महाराज से, यही तुम्हारे अंदर परिवर्तन है. देखो गुस्सा हो रहे, गुस्सा कृष्ण भक्त बने गुस्सा होते हो. हा? अरे मैं गुस्सा, मैं तो नहीं हूं ना कृष्ण भक्त, तुम तो कृष्ण भक्त हो ना, तिलक वगैरह लगाए, गुस्सा क्यों होते हो. हा? क्या फायदा इतना माला जप करने का, इतना नियम पालन करने का, और ये सब ना मंदिरों में रहने का, सब बकवास, गुस्सा होते हो. What change has come in you? तो गुरुदास प्रभु ने कहा I'll tell you what change has come in me. I came to Krishna consciousness some 5 years ago. And if I would have met you 5 years ago before coming to Krishna consciousness, a person like you, I would have killed you. I am sparing your life. That is the change. मैं खाली गुस्सा हो रहा हूं, खाली मुंह से कुछ बोल रहा हूं, बहुत बड़ा चेंज आ गया है मेरे अंदर, और ये सब श्रील प्रभुपाद की उनकी कृपा से आया है. कि यदि श्रील प्रभुपाद ने मेरे अंदर ये परिवर्तन नहीं लाया होता, तो आज तुम अपनी सांसें भी नहीं गिन पाते थे. तो शुक्र मनाओ कि तुम मुझसे 5 साल बाद मिले हो. तो यहां पर मृगारी का उदाहरण कि किस प्रकार से उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया. अजामिल हर प्रकार के पाप कार्य में लगा हुआ ये अजामिल, जिसने अंत समय केवल अपने पुत्र को पुकारते हुए म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाद नाम किमुत श्रद्धया गृणन. ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि अरे ये पापी अजामिल मरते समय नारायण, वो भी अपने पुत्र को पुकार रहा था, भगवान नारायण को नहीं, और इसमें इतना परिवर्तन आ गया, इसने परिवर्तन लाया कि विष्णु दूत इसने बुलवा लिए, अपने कर्मों के द्वारा इसने यमदूत को बुलाया, और नारायण नाम का उच्चारण कर इसने वैकुंठ धाम से विष्णु दूत को बुलवा लिया. तो अजामिल के अंदर उसके पश्चात जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि यदि अजामिल जैसा कुकर्मी भगवान का नाम उच्चारण कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है तो हम कोई बहाना नहीं दे सकते कि मैं भगवत धाम नहीं जा सकता। सुखदेव गोस्वामी जो कि एक निर्विशेषवादी थे, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के पूतना वध की लीला का वर्णन सुना तो उनके अंदर परिवर्तन, केवल भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इन दो वर्णनों को सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो सुखदेव गोस्वामी जान गए कि ये जिस किसी ग्रंथ से आए हैं वो ग्रंथ जो है उसका अध्ययन मुझे करना है, अपने जीवन में उसका पालन करना है। और वो सुखदेव गोस्वामी जिनके मुख से परीक्षित महाराज, और केवल परीक्षित महाराज नहीं, अनगिनत बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि, उन्होंने श्रवण किया श्रीमद् भागवत, तो देखिए क्या परिवर्तन सुखदेव गोस्वामी में देखा गया। नारद मुनि जो कि एक दासी के पुत्र थे और उससे पहले उपभर्ण नाम के वो एक गंधर्व थे जो कि केवल इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, उन्होंने अपने मुख से अपनी ही कथा सुनाई कि मैं केवल इंद्रिय भोग में और प्रजल्प में और सांसारिक गीतों को गाने में लगा रहता था। और वो उपभर्ण दासी के पुत्र में और अंततः नारद मुनि जैसे महाजन, और नारद मुनि के अंदर इतना परिवर्तन कि नारद मुनि के संपर्क में कौन कौन आए जिनके अंदर परिवर्तन आया, जैसे मृगरारी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नलकुवर, मणिग्रीव, वाल्मीकि मुनि, यहां तक कि व्यासदेव, उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की नारद मुनि के श्रीमुख से जब उन्होंने सुना। इसे कहते हैं सही परिवर्तन। श्रीपाद यामोनाचार्य के विषय में कहा गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे बचपन में, और बहुत बड़े विद्वान भी थे। दक्षिण भारत के जो रामानुज संप्रदाय उसमें ये एक अलवर, और फिर इन्होंने, इनको जब राज्य मिला तो सब भक्ति वगैरह छोड़ दी, इन्होंने इंद्रिय भोग में चले गए। और फिर इनके जो दादा थे नाथ मुनि, उन्होंने एक विशेष शाख इनको प्रयोजन किया कि एक उनके ही रसोईया जाकर इन्हें तुड़ुवल्लई नाम का एक शाख खिलाना प्रारंभ किया। भगवान का प्रसाद तो तुड़ुवल्लई, तो तुड़ुवल्लई रोज खाते, उनको समझ में नहीं आता था कि ये इतना स्वादिष्ट, ये क्या है ये व्यंजन। और धीरे धीरे वो जो अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, जो बचपन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वो सब उन्हें याद आने लगी, केवल वो भगवान का एक इतना सा प्रसाद खाने से उनके अंदर परिवर्तन, और आगे चलकर वो इतने बड़े आचार्य यमुनाचार्य बने। तो ये सब उदाहरण हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन सब महानुभावों ने केवल बाहरी रूप से अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाया, आंतरिक रूप से और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो हम अक्सर ये कहानी सुनाया करते हैं साक्षात्कार के विषय में कि एक जंगल में एक शिकारी रोज जाकर चिड़ियों को पकड़ा करता था, अपने जाल में फंसाया करता था, और ये चिड़ियां परेशान उस जंगल के साधु महात्मा के पास गई कुछ जादू मंत्र लेने के लिए। तो साधु महात्मा ने जादू मंत्र दिया चिड़ियों को। क्या जादू मंत्र दिया? कि इसका 16 माला जप करो रोज। मंत्र ये था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। और रोज वो सोला माला क्या करती थी चिड़िया, सब बैठ के शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना मत। और फिर हुआ क्या, शिकारी आया और इनका जप और वॉल्यूम बढ़ गया, शिकारी आ गया, फिर उसने जाल बिछाया, जाल बिछा दिया और हरे कृष्णा जैसे हम लोग जोर जोर से कभी कभी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं जब कोई बहुत बड़े बड़े अनर्थ सताते हैं हमको, तो अंदर से जोर जोर से हरे कृष्णा, क्या याद आ गया मुझे, तो बगल वाला बेचारे की नींद उड़ जाती है, बोले ये अचानक इसका वॉल्यूम क्यों बढ़ गया। तो कई बार हम देखते हैं सुबह के मॉर्निंग जप में अचानक लोगों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो समझ में नहीं आता है कौन से जन्म का क्या याद आया। और कई बार तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ वॉल्यूम वगैरह एकदम शांत रस में रहता है। एक व्यक्ति आए प्रभुपाद के पास, उनके उनके शिष्य मतलब गुरु और उनके शिष्य दोनों आए, तो शिष्य ने प्रभुपाद से कहा कि हमारे गुरुजी मौन व्रत धारण किए हैं तो ये कुछ बोलने नहीं वाले। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूं, तो आई विल प्रीच एंड ही विल लिसन, ब्रिंग हिम। तो ये चिड़िया देखी, अब जाल बिछा दिया, फिर उसने दाना डाला, अब उसे लग रहा था कि इसको इन चिड़ियों को कैसे पता लगा है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन तब तक उनका महामंत्र ठीक चल रहा था, कब तक, जब तक प्रसादम प्लेट नहीं आई। वो दाना जैसे ही दाना को देखा तो अब दाना को खाना गए उसके खाने के लिए, क्योंकि फिर वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सके। और हुआ क्या, फिर जो भी वो मंत्र जप कर रहे थे उसका कोई साक्षात्कार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर शिकारी ने उन चिड़ियों को पकड़ लिया अपने जाल में। पकड़ने के पश्चात फिर उनका मंत्र, शिकारी आया था, जाल बिछाया था और हम लोभ से इसमें फंस गए। तो यह कहानी हमने बहुत बार सुनी होगी, इसका तात्पर्य यह है कि हम भी कहीं उन चिड़ियों की तरह न बन जाएं। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा मंत्र दिया है जिसके द्वारा हम ये जो शिकारी है, माया देवी रूपी शिकारी, इसके जाल से मुक्त होकर, इसके जंजाल से मुक्त होकर हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये शिकारी बहुत चतुर है, ये शिकारी जानता है कि हमारी आसक्ति दानों में है, और वो दाने क्या है, इस भौतिक संसार की इंद्रिय भोग, भौतिक संसार के अलग अलग प्रकार की आसक्ति। और माया देवी इतनी चतुर है कि माया देवी जानती है कि हर एक भक्त के लिए कौन सा दाना डालना है, वो सबके लिए एक दाना नहीं डालती कि हां यदि कोई गृहस्थ है तो इसके लिए अलग दाना, कोई ब्रह्मचारी है उसके लिए अलग दाना उसके पास, और उसमें भी इंडिविजुअल कैटेगरीज के दाने हैं उसके पास कि विशेष रूप से इस जो भी ये जो दास बना है कृष्ण का, इस दास के लिए मेरे पास, मैंने टेलरमेड दाना डाला है जाल में। जैसे भरत महाराज के लिए हिरण फेंका, तो वैसे ही लोभ से यदि हम फिर से वो दाना खाने के लिए गए तो अंततः जो हम भगवत साक्षात्कार में परिवर्तन लाने की अपेक्षा में भक्ति कर रहे हैं उसमें हम कहीं नाकामयाब न हो जाएं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत धाम की टिकट हमारे पॉकेट में लाके दे दी। अरे कम से कम हम स्टेशन तक तो जाएं, कम से कम हम ट्रेन में तो बैठें, हमें टिकट लाकर दे दी है। और हां यदि स्टेशन जाते समय बहुत से बीच में अड़चने आ रही हैं, ट्रेन पकड़ते समय बहुत सी अड़चने आ रही हैं, और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इतना लेट कर रहे हैं कि ट्रेन का टाइम हो रहा है छूटने का, प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट भी चुकी है कई बार तो। लेकिन अगर हम किसी भक्त के संपर्क में रहेंगे तो भक्त जो ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन खींच सकते हैं, है ना। तो भक्त के संपर्क में रहेंगे तो वो ट्रेन खींचेंगे ताकि हम भी ट्रेन में, और कौन सी ट्रेन है वो, गोलोक वृंदावन जाने वाली ट्रेन, ट्रेन में बैठना है। तो इसलिए आज जो हमने चर्चा की अर्जुन का उदाहरण कि कैसे विषाद अवस्था से अर्जुन ने दिखाया पूर्ण शरणागति की अवस्था को कैसे उन्होंने प्राप्त किया, और इसे कहते हैं भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, भगवान की कृपा एज इट इज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।